अमन और मान ने तिलिस्मी पत्थर से उस दानव पर हमला कर दिया था। वो दानव वहीं जलकर मर गया था और राख बनकर आकाश में उड़ गया था। दानव के मरने के बाद तारापरी सोच रही थी कि वो राक्षस परीलोक में मूर्छित पड़े पड़े भी उसे तकलीफ देने की ताकत रखता था। ये सोचकर तारापरी बेहोश हो गई थी। अमन और मान ने काफी कोशिश की थी लेकिन तारापरी होश में नहीं आ पाई थी। तभी करिश्मा जी एक पानी का ग्लास हाथ में लिए वहां आ गई थी। अमन और मान अपनी माँ के हाथ में पानी का ग्लास देखकर चौंक गए थे। मान ने कहा, मॉम, हम लोग तारा के ऊपर पानी डाल चुके हैं, फिर आप और पानी क्यों लेकर आई हैं? तब करिश्मा जी बोली, बेटा, ये कोई आम पानी नहीं है, तिलिस्मी पत्थर को छुआ हुआ पानी है। यही पानी तारा बेटी को होश में ला सकता है। तुम दोनों एक काम करो, यहाँ से उठो और मुझे देखने दो तारा बेटी को। करिश्मा जी ने मान और अमन को तारा के पास से उठा दिया और खुद उसके पास बैठ गई थी। उन्होंने जो पानी अपने साथ लाया था वो तारा परी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालने लगी थी। उस तिलिस्मी पानी की छींटे तारा परी पर पड़ते ही वो होश में आने लगी थी। तारापरी जैसे जैसे होश में आ रही थी वैसे वैसे दानव के दृश्य उसे दिखाई देने लगे थे। जैसे ही उसे ख्याल आया कि वो दानव उसे ले जाएगा, वो एकदम से चिल्लाकर उठकर बैठ गई थी और रोने लगी थी। करिश्मा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया था और उसकी पीठ सहलाने लगी थी। तारा बेटा, तू फिक्र न कर, तू बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटों के रहते कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा शैतान क्यों ना आ जाए। अमन और मान बेचैनी से तारापरी को देख रहे थे। उन्हें उस दानव पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही तारा इतना ज्यादा डर गई थी। थोड़ी देर तक तारापरी करिश्मा के गले लगी रही थी। करिश्मा जी की बातें सुनकर तारापरी को थोड़ी सी तसल्ली मिल रही थी। उसके बाद उसने खुद को संभाला और बोली, करिश्मा मैम, सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं, आप अंगूठी ले आइए। तारापरी के मुंह से सगाई पूरी करने की बात सुनकर करिश्मा जी खिल उठी थी। वहीं अमन और मान भी सुकून महसूस कर रहे थे। तब अमन ने कहा, मिस तारा, आप चाहें तो आज आप आराम कर लें, हम कल भी सगाई की रस्म पूरी कर सकते हैं। तारा एकदम से बोली, नहीं, सगाई की रस्म आज ही पूरी होगी। मैं नहीं चाहती एक और मुसीबत मेरे इस परिवार पर आए। मैं दिल से आप लोगों को अपना परिवार मान चुकी हूँ। तारापरी की बात सुनकर वे लोग बेहद खुश हो रहे थे, एक सुकून सा महसूस कर रहे थे। और फिर तारा करिश्मा को देखते हुए बोली, करिश्मा मैम, मैं चाहती हूँ आज सगाई के बाद हम लोग कल ही शादी कर लें। तारापरी के मुंह से ये बात सुनकर वे तीनों बुरी तरह से चौंक गए थे। करिश्मा जी खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। और बेटा, तुझे इन दानव राक्षस या किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये पहले से ही जानते हैं कि काली शक्तियाँ जरूर कुछ ना कुछ करेंगी और उन्होंने वैसा ही किया। ये शक्तियाँ शादी रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगी क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि तिलिस्मी पत्थर का रक्षक इस दुनिया में जन्म ले। लेकिन तुझे डरना नहीं है, अब तुम हमारे इस परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें मजबूत होना होगा। ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो यहाँ आती रहेंगी। तब तारापरी ने करिश्मा जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। जबकि तारापरी का दिल चाह रहा था वो करिश्मा जी से कह दे कि उसकी शादी आज ही उनके बेटों से करवा दे क्योंकि वो जल्द से जल्द नेक दिल इंसान की दुल्हन बनना चाहती है। आज दानव को देखने के बाद उसके मन में उस राक्षस के लिए एक डर पैदा हो चुका था। वो एक बार फिर से उस दलदल में नहीं फंसना चाहती थी। अब बस उसे जल्द से जल्द दोनों भाइयों से शादी करनी थी और एक बच्चे को जन्म देकर उस राक्षस का अंत करना था। तारापरी का मन उस राक्षस को याद करके एक बार फिर घृणा से भर गया था। वहीं अमन नहीं जाने किस सोच में गुम था क्योंकि तारा का अपने मुंह से सगाई के लिए कहना उसे थोड़ा अजीब लगा था। लेकिन उस वक्त उसने उस बात को अनदेखा कर दिया था। वो अभी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी करिश्मा जी ने अपने जादू से वो सगाई की अंगूठी मंगवा ली थी जहाँ वो रखी हुई थी। तारापरी उनका ये जादू देखकर हैरान थी और मन ही मन सोच रही थी कि एक बार मुझे मेरी शक्तियाँ प्रयोग करने की इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को एक से बढ़कर एक जादू दिखा सकती हूँ। तारापरी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा दी थी। तभी करिश्मा जी ने अमन और मान को कहा कि वे एक एक करके आएं और तारा बेटी से रिंग पहन लें। दोनों ने हाँ में सर हिलाया और पहले अमन और फिर मान दोनों बारी बारी से तारापरी के सामने गए और तारापरी ने उन दोनों को रिंग पहना दी। रिंग पहनाते ही तारापरी के अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जहां पहले वो डर रही थी उस दानव और उसके और रूपों से, अब वो अपने आप को काफी हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी। रिंग पहनाते ही तारापरी का भार किया उन दोनों भाइयों के साथ जुड़ चुका था। करिश्मा जी ने तालियां बजाई और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा कहकर उन्होंने तीनों को अपने गले से लगा लिया था और अनजाने ही तारापरी का हाथ उन दोनों भाइयों से टच हो गया था, जिससे उनके जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के मालिक अमित ने मंत्र लिखकर जिस काली शक्ति को याद किया था वो वहां आने ही वाली थी। लेकिन उसके आने से पहले उसकी निशानियां वहां आ चुकी थी, जैसे कि पृथ्वी में तेज कंपन शुरू हो चुका था और जोर से आंधी तूफान आने लगा था। तभी बड़ी सी झाड़ियों में से एक बहुत बड़ी छिपकली, जिसका कद करीब 20 से 25 फुट के करीब था, वो वहां आ गई थी और उसके मुंह से रह रहकर अंगारे निकल रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इतनी बड़ी छिपकली देखकर कोई भी आम इंसान उसी वक्त डर के मारे प्राण त्याग सकता था। उस छिपकली के ऊपर काले काले चित्ते कपड़े से धब्बे बने हुए थे। वो धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ने लगी थी। वो छिपकली जल्दी ही अमित के सामने आ गई थी। काली शक्तियों का मालिक अमित उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा था। उसे तो मानो यकीन ही हो चुका था कि ये छिपकली जरूर अमन मान और तारा की शादी रुकवा देगी और तारा को उसके सामने पेश कर देगी। अमित ने सोच लिया था अगर तारा उसके पास आती है तो ठीक है, वरना इस छिपकली के हाथों वो उसे मरवा देगा, लेकिन अमन और मान की जिंदगी में उसे नहीं आने देगा। उस छिपकली को देखकर वो तेज आवाज में चिल्लाकर बोला था, एक काली शक्ति रज्जू। उस छिपकली का नाम रज्जू था, जो छिपकली का ही एक पर्यायवाची नाम है। तब अमित बोला, मैं काली शक्तियों का मालिक तेरा बादशाह तुझे हुक्म देता हूँ, मेरे सामने अपने इंसानी रूप में आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ये काली शक्ति छिपकली असल में इंसानी रूप में कैसी दिखती है। ये सुनते ही उस छिपकली के अंदर से अजीबोगरीब रोशनी निकलने लगी थी और देखते ही देखते वो छिपकली एक बेहद हसीन कन्या में बदल गई थी। अमित उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा था। उसकी जो बड़ी सी पूंछ थी वो एक इंतहाई खूबसूरत चोटी में बदल गई थी। काली शक्तियों के मालिक अमित की नीयत उसे देखकर भी खराब होने लगी थी, लेकिन जैसे ही छिपकली ने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला तब आग की जगह उसके मुंह से चिपचिपी लार निकलकर अमित के मुंह पर गिर गई थी। और जहां अमित उसे देखकर अपनी लार टपका रहा था वहां अब उसको लार से घिनाने लगी थी। तब वो छिपकली जिसका नाम रज्जू था वो अपना हाथ अपने माथे पर ले जाकर बोली थी, काली शक्तियों के मालिक को रज्जू का सलाम, मेरा नाम रज्जू है, मेरा कांटा पानी भी नहीं मांगता। ऐसा कहकर वो हंसने लगी थी। अमित थोड़ा चिढ़कर बोला था, हाँ हाँ ठीक ठीक है।
वो अपने ऊपर उसकी लार गिरने से चिढ़ गया था। तब रज्जू बोली, मेरे मालिक हुक्म कीजिए, इस रज्जू को आपने क्यों बुलाया है? तब अमित बोला, मैं बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे महल में चलना होगा, वहां मैं तुम्हें समझा दूंगा। ऐसा कहकर वो उस दरख्त को नमन करके रज्जू के साथ वहां से निकल गया था। वहीं मलिका अभी भी बेजान सी अमित के घर पर उसके बेड पर पड़ी हुई थी। अमित ने उसका अंग अंग निचोड़ दिया था। मलिका में इतनी शक्ति ही नहीं बची थी कि वो उठकर अपने कपड़े पहन सके। हुआ ये था कि काली शक्ति के मालिक अमित को इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि मलिका के अंदर भले ही उसकी दी हुई रूह हो, लेकिन मलिका अमन को चाहने लगी थी। लेकिन काली शक्ति का मालिक अब उसे अपने पास रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मलिका अब उसके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी। इसीलिए उसने मलिका के जिस्म से खिलवाड़ करने के बाद उसका जिस्म बेजान कर दिया था, ताकि अब वो वहां से उठकर कहीं भी ना जा पाए। मलिका का केवल दिमाग ही काम कर रहा था और उसका बाकी जिस्म बेजान पड़ा हुआ था। मलिका को शिद्दत से अमन की याद आ रही थी। उसका रोम रोम केवल अमन को ही पुकार रहा था, लेकिन ये भी अच्छे से जानती थी कि वो दुष्ट अमित कभी भी उसे अमन के पास नहीं जाने देगा। उसे कुछ ना कुछ करके अमित को यकीन दिलाना होगा कि वो अब अमन के पीछे नहीं जाएगी, बल्कि अमित जैसा कहेगा वैसा ही करेगी। मलिका ने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर लिया था कि वो अमित के चंगुल से कैसे अपने आप को छुड़ा सकती थी। वहीं दूसरी ओर सगाई के बाद करिश्मा जी तारा परी को पहनने के लिए कड़ा देती हैं और कहती हैं ये उनके खानदान की अनमोल निशानी है। दिखने में वो कड़ा एक साधारण सा मोतियों का कड़ा था, बड़ा ही सुंदर, लेकिन वो कोई आम कड़ा नहीं था, वो एक तिलस्मी कड़ा था जिसे जागृत करने के लिए केवल उस कड़े के मालिक की एक खून की बूंद ही चाहिए होती थी। जैसे ही कड़े के मालिक की खून की बूंद उस कड़े पर पड़ती उसमें असीम शक्तियां दौड़ने लगती थी।